भारतीय मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार भारत की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या NIA ने भारत के 6 शहरों में छापे मारे हैं। मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, मैंगलोर, लखनऊ और टुमकुर में मारे गए छापों में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन छापों में कथित रूप से स्वघोषित इस्लामिक स्टेट के साथ सहानुभूति रखने वाले और कथित रूप से हमलों की योजना बनाने वाले संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे विषय पर और जानकारी के लिए हमने भारत में ABP न्यूज के साथ वरिष्ठ पत्रकार और सुरक्षा और सामरिक मामलों के विश्लेषक राजन सिंह से बात की।
देखिए, ये घटना जो गिरफ्तारियों की हुई, अब तक कुल 19 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये जो लगातार क्वेश्चनिंग की गई थी, पहले 4 लोग हरिद्वार में गिरफ्तार किए गए थे, उसके बाद मुंबई के मुंब्रा से जो इनका किंग पिन गिरफ्तार हुआ था, उसके बाद जो पूछताछ में कई ऐसे खुलासे हुए, उसके बाद देश के अलग अलग शहरों में IB, NIA जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है और तमाम जो राज्यों की ATS है, ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है और इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोभाल, जो कि इंटेलिजेंस के ऑपरेशनल मामलों के माहिर माने जाते हैं और अब तक जितने ऑपरेशंस इन्होंने देश में या विदेश में अंजाम दिया उसमें सक्सेस रेट काफी ज्यादा रहा। तो जो ये जो एक नेटवर्क भारत बन रहा था IS का, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि लगातार पिछले 4-6 महीनों से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए इन पर नजर रखी जा रही थी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए कई ऐसी विदेशी एजेंसीज भी थी, जैसे इसराइल और अमेरिका की भी सिक्योरिटी एजेंसीज थी जो जिनसे भारत मदद ले रही थी और भारत उनको मदद दे रही थी। तो उस दौरान कुछ ऐसे इंटरसेप्ट मिले थे जिससे कि ये साफ जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं जो इंडियन एलिमेंट थे, जो कि पहले इंडियन मुजाहिदीन में थे और बाद में जब इंडियन मुजाहिदीन पर क्रैक डाउन हुआ था तो उसके बाद 2 भाई थे, सुल्तान अमरार और शशि अमरार, जो कि रियाज भटकल और इकबाल भटकल के गांव के ही भटकल गांव है कर्नाटका में, वहां के रहने वाले थे। तो ये दोनों IS के लिए लड़ने के लिए सीरिया चले गए। तो सुल्तान अमरार जो कि बड़ा भाई था वो वहां पर मारा गया सीरिया में IS के लिए लड़ते हुए, लेकिन जो छोटा भाई शशि अमरार उसे ये जिम्मेदारी दी गई कि वो भारत में IS के आइडियोलॉजी को बढ़ाए और लोगों को जोड़े और भारत में एक तरीके से इस आतंकी संगठन का पैर पसारने की कोशिश की। तो उसने बकायदा सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल किया भारत में इन लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए और बकायदा उसने एक संगठन बनाया था जुनूद उल खलीफा ए हिंद, जो कि भारत में एक आइडियोलॉजी तो IS की थी लेकिन भारतीय रूप देने की कोशिश की गई थी इस संगठन को और मुतब्बिर मुश्ताक शेख को इसका किंगपिन बनाया गया था और यूसुफ अल हिंदी के नाम से कोड नेम से जो शफी अमरार जो कि वहां बैठा हुआ है सीरिया में वो लगातार इससे इंटरनेट पर बातचीत करता रहा, फेसबुक के जरिए इंस्ट्रक्शन देता रहा था। और जब 4 महीना पहले एक इंटरसेप्ट आया कि 4 कलश रखे जाए तो 4 कलश, फिर बाद में एक इंटरसेप्ट आया कि 3 कलश और जोड़ दिए जाए 7 कलश, उसको डिकोड किया गया कि 7 जगह पर बॉम्ब रखने की साजिश रची जा रही है। और सबसे बड़ी साजिश थी कि हरिद्वार में जिस तरीके से अर्धकुंभ चल रहा है उसको टारगेट किया जाए, तो अलग अलग जगह पर लोगों को जोड़ा गया इंटरनेट के जरिए और जितने भी पकड़े गए हैं मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और पढ़े लिखे हैं, यानी किसी की भी जो शिक्षा है वो कम नहीं है, या तो वो ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर इंजीनियर हैं। तो जो लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे वो लोग इससे जुड़े और जिस तरीके से एक नेटवर्क तैयार किया गया और उसके बाद बताया जा रहा है कि नवंबर महीने में 6 लाख रुपए जो यहाँ पर मुतब्बिर मुश्ताक शेख के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए सीरिया से, तो वो पैसा एक फंडिंग के लिए आया था। तो अभी उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसी ने तमाम लोगों पर क्रैक डाउन किया, पहले 4 लोग पकड़े गए हरिद्वार में, उसके बाद उनसे पूछताछ के आधार पर जो किंग पिन है मुंबई के सटे हुए मुंब्रा से पकड़ा गया और उसके बाद कई शहरों में 12 जगहों पर अलग अलग छापेमारी हुई है और अब तक 19 लोग पकड़े जा चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के जरिए इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये जो नया नेटवर्क तैयार हो रहा था उसको किसी भी घटना का अंजाम देने से पहले उनको पकड़ लिया और उनको जो क्रैकडाउन हुआ है उसमें कई लोग पकड़े गए हैं। तो अभी उनसे पूछताछ की जा रही है, उनसे मुख्य तौर पर 3 सवाल किए जाएंगे कि उन्हें फंडिंग कहाँ से हो रही थी, जो प्रोक्योरमेंट जो 2 जगह से एक्सप्लोसिव बरामद हुए हैं, एक्सप्लोसिव कहां से सप्लाई हो रहा था, तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि उनसे पूछताछ की जा रही है। और साथ ही क्या उन्होंने कोई टेरर कैंप ज्वाइन किया था, कोई ट्रेनिंग ली थी, तो इस बात पर भी जोर होगा। और आगे जब पूछताछ चलेगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि किसका इन्वॉल्वमेंट कितना था, क्या कोई वाकई में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी के मौके पर बड़े पैमाने पर हमले की योजना थी, तो उस पर भी इंटेलिजेंस एजेंसी और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उसकी नजर है।
जी राजन जी, बस ये पूछना चाह रहे थे आपसे, लेकिन जो आपने नाम वगैरह लिए उन पर कथित रूप से अभी आरोप लगे हैं या उनके आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं, मतलब जो छापे वगैरह मारे गए हैं, मतलब ये उनके ऊपर आरोप है कि वो इस तरह से कर रहे थे, या काफी प्रमाण है उनके खिलाफ अभी भी?
देखिए, इसमें जो मुतब्बिर मुश्ताक शेख है उसके खिलाफ काफी पुख्ता सबूत मिले हैं कि वो लगातार सफी अमरार जो कि सीरिया में बैठा है और यूसुफ अल हिंदी के कोड नेम से लगातार इंटरनेट जो पर जो चैटिंग चल रही थी और जो बातचीत सोशल मीडिया के जरिए, तो वो काफी पुख्ता सबूत है। 6 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। फिर हैदराबाद में जो उसने कुछ लोगों को जोड़ा और जहां पर एक्सप्लोसिव आईईडी डिवाइस बनाने के लिए, जो कि आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए जो डिवाइस तैयार करने थे, एक्सप्लोसिव डिवाइस, वो बरामद हुए, मुंबई में उसके घर से बरामद हुए। तो ये जो 6 से लेकर 8 लोग हैं इनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। बाकी के खिलाफ सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए जो बातचीत हुई है, जो इंटरसेप्ट है, इंटेलिजेंस इंटरसेप्ट, वो सबूत है। तो अभी जो हमारी बात हुई है सुरक्षा एजेंसियों से, उनका ये कहना कि हो सकता है इसमें कई लोग बाद में निर्दोष साबित हो सकता है कि वो सिर्फ एक जो अट्रैक्शन है आईएस के प्रति एक खास वर्ग में, तो हो सकता है कि वो उसके कारण जुड़े हों। लेकिन सीधे सीधे अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि किसी ने भी कोई टेरर कैंप ज्वाइन किया है, क्योंकि अभी तक ये जो नेटवर्क बना था वो वहां पर सिर्फ लोग जोड़े जा रहे थे और उनसे ये उकसाया जा रहा था कि टेरर की इंसिडेंट को वहां पर घटना को अंजाम दे। लेकिन अभी तक न किसी की ट्रेनिंग हुई थी, किसी के पास से इतने एक्सप्लोसिव बरामद, सिर्फ हैदराबाद और मुंबई के अलावा कहीं और से एक्सप्लोसिव बरामद नहीं हुए हैं। तो ऐसे में जो कानून है हमारा यूएपीए एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, उसमें सीधे आतंकी घटना से जुड़े हुए थे, जो हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, उसके लिए काफी मुश्किल होगा, उसके लिए काफी कॉरोबरेटिव एविडेंस जुटाने होंगे ताकि ये मामला कोर्ट में ठहर पाए। लेकिन जिस तरीके से जांच की जा रही है, तो एजेंसी का कहना है कि अगर कोई लोग निर्दोष पाए जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके साथ जो अदालत में अगर सबूत नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर वो छूट जाएंगे। लेकिन अभी जो ऑपरेशन चल रहा है वो इस बात की कोशिश है, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट हैं और जिस तरीके से फ्रांस ने आईएस के खिलाफ क्रैकडाउन किया है और वहां से लगातार इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं जो भारत में आईएस के सपोर्टर एलिमेंट्स हैं, और ये जो नया संगठन बनाया गया है जुनूद खलीफा ए हिंद, तो उससे जुड़े हुए लोग कहीं बड़ी घटना को अंजाम न दे, क्योंकि मौका 26 जनवरी का मौका ऐसा है कि अगर छोटी भी घटना को अंजाम देते हैं तो उससे उन्हें बड़ी पब्लिसिटी मिल सकती है, और खास करके भारत जैसे देश में, तो सुरक्षा एजेंसियां कोई चूक ना हो जाए इसके लिए लगातार कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चला रही है। एनएसए अजीत कुमार डोवाल खुद इन पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो इंटेलिजेंस इनपुट मिलते हैं उसमें रिएक्शन टाइम कम से कम होना चाहिए ताकि सिक्योरिटी एजेंसी को स्लिप दे को चकमा देकर ये भाग न पाए, ये एलिमेंट पकड़े जाए, और अगर उनके खिलाफ सबूत नहीं होता तो निश्चित तौर पर वो छूटेंगे। लेकिन अब कोई जो पूरी एहतियात बरती जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि इन तमाम एलिमेंट्स पर पहले पकड़कर उनसे पूछताछ की जाए और जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर अदालत में आगे कार्रवाई होगी। तो जो हमारी जानकारी देर रात में इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारियों से बातचीत हुई थी कि सभी जो अलग अलग शहरों में देश के गिरफ्तार हुए हैं उन्हें दिल्ली लाया जाएगा, दिल्ली में सस्टेंड क्वेश्चनिंग होगी, साइंटिफिक टेस्ट होंगे और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि किसके खिलाफ चार्जशीट दायर किया जाए, किसके खिलाफ नहीं किया जाए, किसे बरी किया जाए। तो ये तमाम चीजें हैं वो सबूत के आधार पर होंगी, लेकिन जो ऑपरेशन चल रहा है वो इस बात की कोशिश है कि आईएस आतंकी संगठन भारत में अपना नेटवर्क न फैला पाए। नेटवर्क फैलाने से पहले ही जिस तरीके से एक ट्रैक डाउन हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो इस तरह के एलिमेंट है उनके हौसले पस्त हुए हैं।
जी, एक आखिरी सवाल आपसे संक्षिप्त में राजन जी, की जो सुरक्षा इंतजाम है वो मेरे ख्याल पहले ही बहुत कड़े होंगे, लेकिन क्या अब और कोई कदम प्रशासन उठा सकता है, क्योंकि 26 जनवरी और जैसा कि आपने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे हैं वहां पर मुख्य अतिथि हैं इस साल?
विशेष तौर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कई रिंग की सिक्योरिटी रिंग बनाई गई है, तमाम जगहों पर स्नाइपर्स तैनात किए, जितने भी राजपथ पर जो है यहाँ पर मुख्य परेड होना है वहां पर स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। इस साथ ही जहां जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति जाएंगे वहां वहां सुरक्षा पुख्ता की गई है। कहा जा रहा है कि वो चंडीगढ़ जा रहे हैं और चंडीगढ़ में रॉक गार्डन में एक उनका प्रोग्राम है, रॉक गार्डन में वहां पर एक मुलाकात है, तो वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और सिक्योरिटी के कई ऐसे रिंग बनाए गए हैं और साथ ही इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार इसको मॉनिटर कर रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए कि कहीं कोई ऐसी बातचीत, कहीं कोई ऐसी योजना तो नहीं बन रही है जिससे कि बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है आतंकी संगठन। तो तमाम चीजों की मॉनिटरिंग खुद अजीत कुमार डोभाल कर रहे हैं और तमाम जो बड़े पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनके डीजीज को ये कहा गया कि 29 जनवरी तक वो दिल्ली में रहे और अगर जरूरत पड़ी तो आधे घंटे के इंफॉर्मेशन में वो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर बैठक के लिए आए ताकि किसी भी अगर कोई खतरा जिसके बारे में इंटेलिजेंस इनपुट मिलते हैं तो क्रैक डाउन किया जा सके। तो सुरक्षा के मुकम्मल इंतजाम किए गए। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि जिस तरीके का खतरा है उसको देखते हुए ट्रिपल हाई अलर्ट, जो मैक्सिमम हाई अलर्ट होता है उसको डिक्लेयर किया गया है और खास करके 18 राज्यों में जहां पर आईएस के बारे ड्रोन कहा जो एक लिस्ट बनाई गई है गृह मंत्रालय की तरफ से कि इन राज्यों में आईएस के एलिमेंट हो सकते हैं, तो उन 18 राज्यों में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।